Kevin.
Having said this, आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजर में इतनी वसत आ जाती है कि वो दुनियावी अलूम हासिल कर लेता है। इसी तरह अगर सालिक अपने नुक्ता जात में मौजूद गैब की दुनिया से रूशनास है, इसी तरह अगर सालिक अपने नुक्ता जात में मौजूद गैब की दुनिया से रूशनास है या गैब की दुनिया में दाखिल हो गया है या उसके अंदर गैब का शहूद पैदा हो गया है, तो बतदरीज बतदरीज यानी दर्जा बदरजा उसके अंदर ऐसी निगाह पैदा हो जाती है जिसके जरिए वो अजलता बद देख लेता है, गैब की दुनिया में जो कुछ है उसे छू लेता है। अजलता बद को देखना या अजलता बद गैब की दुनिया में अफराद कायनात से मुलाकात करना, उठना बैठना, सितारों में घूमना, अफलाक की सैर करना, सितारों में गश्त करना उसके लिए मुमकिन हो जाता है। उसके सामने वो तमाम हकायक आ जाते हैं जिन हकायक पर कायनात तख्लीक होती है। वो ये भी देख लेता है कि कायनात की साख्त में किस किस्म की रोशनियां बरसरे अमल हैं, इन रोशनियों का सोर्स क्या है, रोशनियां किस तरह बन रही हैं, रोशनियां अफरादे कायनात में किस तरह तकसीम हो रही हैं, और रोशनियों की मिकदारों से कायनात के नकूश किस तरह बन रहे हैं। सालक की आंख ये भी देख लेती है कि रोशनियों का सोर्स अल्लाह ताला की तजल्लियात हैं। यानी ये देखें दर्जा बदरजा हकायक बात हो रही है रोशनियों की, रोशनियां ये तसव्वुरात की सूरत में होती हैं, ये तसव्वुरात वाजे होते चले जाते हैं होते चले जाते हैं। हजूर कलंदर बाब औलिया फरमाते हैं चांदनी रात में चांदनी से फिजा मामूर है, उस वक्त अगर आतिशबाजी छोड़ी जाए, गौर करें ये मंजर को उभारें जहन में, चांदनी रात चांदनी से फिजा मामूर है, अगर उस वक्त आतिशबाजी छोड़ी जाए तो आतिशबाजी छोड़ने से चांदनी की फिजा में सफेद रंग की रोशनियां जाहिर होती हैं, वो चांदनी पर मुहित नहीं होती, चांदनी उन पर मुहित रहती है। ऐसा महसूस होता है कि फिजा में चांदनी है, चांदनी में नक्शो निगार हैं, फूल पत्तियां हैं, फूल झड़ी के अंदर से फूल गिर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फूल झड़ी के अंदर नक्शो निगार मौजूद थे। इसी तरह जब रोशनी मुतहर्रक होती है तो रोशनियों के जिस्म यानी नस्मा से फूल झड़ी की तरह नक्शो निगार मजहर बनते हैं। मिसाल देखें और इस मिसाल पे बहुत गौर कीजिए, चांदनी फिजा में चांदनी फैली हुई है और आतिशबाजी छोड़ी जाए फुलझड़ी जिसमें से ये सब मंजर आपके देखे हुए हैं। इसी तरह अब ये जो फुलझड़ी के अंदर से नक्शो निगार मौजूद थे डॉर्मेंट हालत में, आपने उसे शोला दिखाया तो वो रोशनियां निकली और वो कहीं चांद तारे की तरह दिख रही हैं या चौंक चुंध्या देने वाली उसमें से रोशनियां गुलबुकियां बना रही हैं, पत्तियां बन रही हैं। इसी तरह रोशनियों के जिस्म यानी नस्मा यानी जहन से फुलझड़ी की तरह नक्शो निगार मजहर बनते हैं। एक राज की बात सुन लें, आलम में बातिन की सैर हो या आलम में गैब में दाखला, ये खारजी सिमतों से नहीं होता, عالم غیب میں داخلہ انسان کے اپنے نقطہ ذات میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نقطہ ذات تک رسائی حاصل کرنی. جب تک کوئی انسان اپنی ذات یعنی نقطہ ذات کو نہیں پہچان لیتا اس وقت تک اس کے اندر روحانی طرز متحرک نہیں ہوتی. اور جب انسان خود کو جان لیتا ہے اور اپنے نقطہ ذات کو سمجھ لیتا ہے اور قلب کے اندر دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے, یہ دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے یا اول الالباب قرآن کی اصطلاح ہے, تو اس کے اوپر کائنات منکشف ہو جاتی ہے. وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ ظہور کائنات کے میں وہ خود بھی قافلے کا ایک عنصر ہے, کہ ظہور کائنات کے اس قافلے کا پورے قافلے کا وہ خود بھی ایک عنصر ہے یا مسافر ہے. ایک اور راز بھی سن لیجئے, دل کے مرکز میں روشنی کا ایک نقطہ ہے جو دل کی انتہائی گہرائی میں واقع ہے. یہ نقطہ مائکرو فلم ہے. کیا ہے؟ مائکرو فلم. راہ سلوک پر چلنے والا مسافر اپنے دل کے اندر جب اس نقطے سے آشنا ہو جاتا ہے تو اسے نقطے کے اندر گہرائیوں میں حقیقت کے نشانات ملتے ہیں. تمام حقیقتیں شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور ہر حقیقت مجسم ہے, یعنی ایک جسم رکھتی ہے. آپ حقائق سے اس طرح واقف ہوتے ہیں جیسے آپ کسی کے جسم سے واقف ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ چیپٹر ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. بیچ میں ہم نے ایک یہ صفحہ نمبر ہے جی 196. اب ذرا اس نقشے پہ یہ چارٹ پہ نظر ڈال لیں, غور کریں. اس کا عنوان ہے ظہور تجلیات ربانی. تجلیات ربانی, اللہ کی صفت ربانیت کی تجلیات کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ چار عالمین ہیں. وہ چار عالمین کیا ہیں؟ ذات باری تعالی ہے, پھر اس کا دائرے بنے ہوئے ہیں نا دو, یہ چار دائرے جو بنے ہوئے ہیں, ایک کے اندر دوسرا, دوسرے کے اندر تیسرا, تیسرے کے اندر چوتھا. تو پہلا دائرہ جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے. اس کو کہا ہے یہ ماوراء حقیقت. یہ ماوراء الماوراء حقیقت. ماورا کہتے ہیں ما جو, ورا اوپر. یہ ماورا الماورا حقیقت, حقیقت ایسی جو اوپر سے بھی اوپر ہے, یعنی یہ ہے اصل حقیقت. پھر اسے نچلا تجلی ذات باری تعالی, اسی کا نام واجب الوجود ہے اور اسی کو ماورا حقیقت کہتے ہیں, یعنی یہ حقیقت سے اوپر کا درجہ ہے. ذات باری تعالی سے نیچے ہے تجلی ذات, تجلی ذات کے نیچے ہے تجلی صفات, اور یہ حقیقت ہے. اسی کا نام سری ہے اور پھر اسی کا نام روحی ہے. یہ دونوں, یہ گویا تین دائرے, اندر کے تین دائروں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو واجب الوجود ہے اسی کو عالم امر خاص کہا ہے, اور یہ اصل میں تجلی ذات کا عالم ہے. یہ عالم امر خاص کی وضاحت آگے بھی آئے گی. یہاں پہ ایک مختصر تعارف عرض کر دیتا ہوں کہ عالم امر خاص محیط ہے عالم امر عام کو, اور عالم امر عام جو ہے یہ حقیقت ہے. عالم امر عام یہ حقیقت ہے, اسی کو پھر تجلی صفات کہا ہے, اسی کا نام یہ سری اور روحی. ये देखे ना, वाजिबुल वजूद वाले दायरे में आपको अख्फा और खफी लिखा मिलेगा। ये अख्फा और खफी आलम में अमरे खास है। मैं जरा इसको दरमियान में आके पहले जरा इसकी बात कर लूं, फिर आता हूं ये अमरे आम और अमरे खास को वाजे करने। ये जो दरमियान में कल्ब और नफ्स है, ये है आलम खल्क। अब देखिए सारा चार्ट यहां पे वाजे कर दिया कि ये चार आलमीन है, ज़ाते बारी ताला है, तजल्लिये ज़ाते बारी ताला है, तजल्लिये सिफात है, और फिर आलम में खल्क है। ये जो आलम में खल्क है, ये हकीकत का अक्स है। हकीकत आलम में खल्क के बाहर यानी तजल्लिये सिफात यानी आलम में अमर है, और आलम में अमर से बाहर तजल्लिये ज़ाते बारी ताला है या उसको जो मुहित है वो मावराए हकीकत है, यानी वो हकीकत से भी ऊपर की चीज है। इसको आलम अमर खास कहा है। और ये आलम अमर खास वो दर्जा है जिससे सिर्फ हजरत इंसान को, हजरत आदम को रूशनास किया गया। वह नफ़ख़्ता फ़ीहे मिनर रूही कहकर, देखें कुन कहकर तमाम कायनात की अनवा और उसके अफराद को तख्लीक कर दिया गया। उसके बाद उनको हरकत में लाने के लिए अलस्तो बे रब्बेकुम कहा गया। फिर उन्होंने जवाब में कालू बला कह के एक्नॉलेज किया, अपने अंदर की सारी सलाहियतों को एक्टिवेट होने की इत्तला दे दी, वो फंक्शनल हो गई। जब वो फंक्शनल हो गई, अब उसके अलावा एक कहानी ये चल रही है कि इन ये आलम में अमरे आम में से हजरत इंसान को चूंकि अल्लाह ने अपना नायब बनाना था, लिहाजा उसको उसके अंदर व नफ़ख़्ता फ़ीहे मिनर रूही, अपनी रूह में से कुछ फूंक दिया, यानी को खास सलाहियतें फूंक दी। वो उन सलाहियतों के इस्तेमाल का इल्म जो है वो इल्मुल अस्मा कहलाता है। तो आलम अमरे खास, ये बंदा जो आलम अमरे खास यानी कि जिसके अंदर अल्लाह की फूंकी हुई सलाहियतों का क्या कहते हैं इजरा हो जाए, वो जारी हो जाए, वो काम करने लगे, तो उसका जहन का एक रुख ऊपर मावराउल मावराए हकीकत तक चला जाता है, जिसको आप ज़ाते बारी ताला कह रहे हैं। अब नीचे कैप्शन दिया गया है, दोबारा इसको पढ़ लीजिए। आलम लाहूत, ये तजल्लिये ज़ात है, ये आलम अमरे खास है, इसको नहरे तस्वीद भी कहा है, इसी को वाजिबुल वजूद कहा है, इसी का दो रुख जो है वो अख्फा और खफी है। दूसरा आलम है आलम जबरूत, ये तजल्लिये सिफात का दायरा है, इसे आलम अमरे आम भी कहा है, इसी को नहरे तजरीद कहते हैं, आलम अरवाह भी इसी को कहते हैं, यही असल में लोहे महफूज है, और यही सिर्री और रूही, इसके आगे दो परत जो हैं वो सिर्री और रूही कहलाते हैं। अब आलम मलाकूत क्या है, इसी को आलम मलाइका कहते हैं, इसी को आलम कल्ब कहते हैं, इसी को आलम गैब गैब आलम कल्ब व गैब आलम मानी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कोई कसर रह गई, एक लफ्ज होता है एक मानी होते हैं, तो ये जहाँ पे हमारे तसव्वुरात के जो मीनिंग्स हैं वो असल में ये आलम मलाकूत से ताल्लुक रखते हैं। आलम बातिन भी इसी को कहते हैं, किसको, आलम मलाकूत को। इसी को नहरे तशहीद भी कहते हैं, इसी को कल्ब कहते हैं, और चौथा जो है वो आलम नासूत है, इसी को आलम जिन्नात आदम कहते हैं, इसी को आलम जाहिर कहते हैं, और फिर इसी का नाम है नहरे तजहीर, और इसी का नाम है नफ्स। और अगर आप यहां नफ्स से ऊपर को जाएं, ये देखें ये सारी कॉम्पोजिशन को कुरान ने कहा है, लकद खलकना खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, کہ انسان کا قوام تو ہم نے بڑا احسن بنایا ہے، ثم رددنا ہو فی اسفل السافلین، تو گویا یہ نفس سے اوپر جانے کے بجائے یہ نیچے کو گر گیا، تو بتائیے ہم کہاں رہ گئے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟